मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 12 नवंबर 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। मित्रों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सबसे अवधारणा के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं, जिसे आप परसेप्शन कहते हैं और कभी कभी हम बोल चाल की शब्दावली में या किताबों में भी पूर्वाग्रह के रूप में पढ़ लेते हैं या दुराग्रह के रूप में भी पढ़ लेते हैं। इस पर हम बात करते हैं और मैं अपनी बात की शुरुआत अभी अभी आई एक खूबसूरत सी फिल्म से करना चाहूंगा। हालांकि आए हुए लगभग एक महीना हो गया है और वह फिल्म है बधाई हो। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने यह फिल्म देखी है या नहीं देखी है, लेकिन जिस तरीके से फिल्म के रिव्यू आए और जिस तरीके से यह व्यापार भी कर रही है, टिकट खिड़की पर काफी अच्छा कलेक्शन कर रही है, तो उसे देखते हुए मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों ने जरूर देखी होगी और अगर नहीं देखी हो, गुंजाइश निकल सके तो एक बार देखने की कोशिश कीजिए। और देखने की कोशिश ही मत कीजिए, उसमें जो मूल भाव है, जो सार है, जो मैसेज है, उसे पकड़ने की भी कोशिश कीजिए। देखिए, अब ये बात अलग है कि जिसे मैं मूल भाव मूल सार कह रहा हूं, मेरे हिसाब से कुछ और हो सकता है और आप सबके हिसाब से कुछ और हो सकता है, यहां तक कि हर एक के हिसाब से कुछ कुछ और हो सकता है, और यही कला की सबसे बड़ी खूबी भी होती है। तो यूं कह लीजिए कि मैं यहां अपने हिसाब से इस फिल्म को देखने के बाद जो मुझे लगा उसकी बात कर रहा हूं, और अगर आपने फिल्म देखी है तो मेरी बात से अपनी बात को मिला करके एक बार फिर से रिव्यू करें, या नहीं देखी हो तो आप जो मैं बात कह रहा हूं उस अंदाज से देखने की कोशिश करें, तो शायद आपको फिल्म में कुछ नई और बड़ी महत्वपूर्ण चीजें जानने को मिलेंगी। मित्रों, ज्यादा बेहतर है कि मैं कहानी पर न जाऊं, क्योंकि कहानी पर जाने के बाद तो पूरा वक्त उसी में खत्म हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, बात यह है कि एक अधेड़ उम्र का परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है। जब उनकी पत्नी गर्भवती हो जाती हैं तो उनके परिवार में और मोहल्ले में एक किस्म के भूचाल की शुरुआत होती है। थोड़ी सी उम्र अधिक हो गई है और उस अधिक उम्र में इस तरीके से एक पत्नी का गर्भवती हो जाना कोई न तो अननेचुरल बात है और न कोई अनैतिक बात है, लेकिन जो मध्यवर्गीय मानसिकता है वह इसे बड़े अलग तरीके से लेती है, और ये दोनों बेचारे पति पत्नी एक प्रकार से सामाजिक हास्य और व्यंग के केंद्र बन जाते हैं। सामाजिक हास्य और व्यंग के केंद्र, चलिए वहां तक बात सब ठीक है, समाज जो भी कहे, आसपास पास पड़ोस के लोग जो भी कहें, लेकिन दिक्कत जो होती है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो ये है कि इस हस्बैंड वाइफ के यानी इन माता पिता के दो बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं। एक बेटा तो अच्छा 27-28 साल का होगा, जो कॉरपोरेट में नौकरी भी कर रहा है, और एक है जो अभी 11th-12th में पढ़ रहा है। ये दो बेटे हैं, इन्हें भी अब शर्म आ रही है, और इन लोगों ने भी, इन दोनों ने अपने माता और अपने पिता, इन दोनों के प्रति एक तरीके से पूर्वाग्रह पाल लिया है कि इन्होंने कोई गलत काम किया है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बेशर्म हो गए हैं, इन्हें लज्जा नहीं आती है, हम दूसरों को क्या मुंह दिखाएं। और बटने चुरेले कि जब वो बाहर निकलते हैं तो लोग व्यंग के रूप में उनसे कुछ इस तरह के कमेंट भी करते हैं उन पर। यहां तक कि ये अपने बुआ की लड़की की शादी तक में नहीं जाते कि पापा मम्मी वहां जा रहे हैं और मेरी मम्मी को अगर गर्भवती की स्थिति में देखेंगे तो लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, तो उस शर्म से, उस लज्जा से बचने का एक ही उपाय है कि वहां ना जाया जाए, राइट। इसके बाद इसमें जो बड़े बेटे हैं, जो आयुष्मान खुराना, वो एक लड़की से प्रेम कर रहे होते हैं, उनकी मां से मिलने जाते हैं, तो उनकी मां उस समय अपनी लड़की से कह रही होती है कि वो तो बहुत ही बेशर्म परिवार है, इस उम्र में सोचो कि वो उनके बच्चा होने वाला है, ऐसे परिवार में तुम जाओगी, मतलब वो आलोचना कर रहे होते हैं उनके माता और पिता के, आयुष्मान खुराना के। आयुष्मान खुराना सुन लेता है इस बात को और वो फिर बहुत नाराज होता है, और यहां से टर्न लेती है फिल्म, यहां से टर्न लेती है, टर्निंग प्वाइंट है। वो अब सोचता है कि नहीं, मैंने अभी तक अपने माता पिता के बारे में जो भी धारणा पाल रखी थी वो बिल्कुल गलत थी, अब मैं उनका सपोर्ट करूंगा। इसमें गलत उन्होंने क्या किया है, क्या गलत हो गया है? और मित्रों, अब जो लड़का अपने माता पिता का इतना विरोधी हो गया था केवल इसी वजह से कि उनके मां को इस उम्र में बच्चा होने वाला है, अब उनके सपोर्ट में आकर के खड़ा हो जाता है। और जैसे ही सपोर्ट में आकर के खड़ा होता है, पूरा का पूरा आसपास का वातावरण बदल जाता है। आसपास का वातावरण उसके अपने छोटे भाई को भी वो सपोर्ट में ले आता है, चारों तरफ एक सपोर्ट का वातावरण बन जाता है। कोई अगर कमेंट करता है तो उन कमेंट्स के वो बहुत ही रियलिस्टिक और बड़े तार्किक जवाब देता है। आप सुनिए, बहुत ही तार्किक जवाब देता है। और नो डाउट कि फिर माता पिता को तो खुशी होगी ही होगी, क्योंकि उनकी खोई हुई शक्ति वापस आ जाती है अगर अपने बच्चों से ही इस तरह से लज्जाजनक भाव से रोज मुलाकात करनी पड़े। यहां तक कि उनकी मां भी, जो थोड़ी सी विरोधी हो गई थी, वो भी ठीक ठाक हो जाती है क्योंकि वातावरण बिल्कुल बदल चुका है। सोच करके देखिए कि उन माता पिता की क्या हालत होगी जो इतने शर्मिंदा महसूस हो कर रहे हैं, जबकि अनैतिक कहीं कुछ नहीं है, अवैज्ञानिक कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय जो मानसिकता होती है वो उसकी देन है। अब आप देखिए कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, माता पिता की बिल्कुल वही स्थिति है, सारी घटनाएं वही हैं, आसपास का परिवेश वही है, वातावरण वही है, केवल उस जो बड़ा लड़का है, जो हीरो है, जो आयुष्मान खुराना बने हैं, उस वो अपनी अवधारणा को बदल देता है, अपने परसेप्शन को बदल देता है। और बदलता इस रूप में नहीं है कि कोई जबरदस्ती लाद करके आया है, वो सच को जानता है, सच को जानने की कोशिश करता है। पहला बिंदु। मित्रों, जो दूसरा बिंदु है, आप देखिए कि अपनी प्रेमिका की मां को वो बहुत उल्टा सीधा सुना करके आता है और वहां एक वाक्य कहता है कि काश मैं अपने माता पिता जैसा बन पाता, उन्होंने हमें इस तरीके से पाला है, इस तरीके से हमारा ध्यान रखा है, उन्होंने पूरी जिंदगी हमारे ऊपर न्योछावर कर दी है इस तरीके से। और उनकी उसकी माता को बहुत खराब लगता है और इसके बाद इन दोनों के संबंध बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, यानी कि हीरोइन और हीरो के संबंध खत्म हो जाते हैं। वो लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, आपस में बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं। तो जब मां के प्रति आयुष्मान खुराना का परसेप्शन सही होता है तो बट नेचुरली उसका व्यवहार अब बदल चुका है, अपने मां का ख्याल रखता है, बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, पिता का भी ख्याल रखता है, उसके गले मिलता है, पिता की आंखों में वो ममता उसे दिखाई देती है, अभी भी दिखाई देती है। पिता भी आयुष्मान खुराना की आंखों में अपने लिए अब लज्जा का भाव न पाकर के सम्मान का भाव पाता है। तो एक दिन मां बैठी रहती है और कहती है कि बेटे, पहले तो तुम उसके साथ, एनी उसका नाम है, उसके साथ ऑफिस जाया करते थे, आजकल तुम उसके साथ नहीं जाते हो क्या? वो कहता है कि नहीं, नहीं जाता हूं। और फिर वो कारण बताता है तो कहती है कि नहीं, ये बताओ कि अगर कोई, मैं तुम्हारी मां हूं, और कोई तुम्हारी मां को इस तरीके से बोल करके आ जाए तो तुमको कैसा लगेगा? अब उसका परसेप्शन उनके प्रति भी बदलता है, यानी कि अपनी होने वाली सास के प्रति बदलता है कि सच बात है, अगर कोई मेरी मां को इस तरीके से कह के चला जाए तो मैं बिल्कुल नाराज हो जाऊंगा, उसे संबंध तोड़ दूंगा। तो वही तो उस लड़की ने किया, क्योंकि मैंने उसके मां को इतना उल्टा सीधा कहा है, तो उसको क्या गलत कह रहा किया उसने? कहता कि बेटे जाओ और तुम माफी मांग करके आओ। और वहां जाता है और बिल्कुल एक तरफा डायलॉग है, कि बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों वो स्क्रिप्टिंग, जब आयुष्मान खुराना 3-4 मिनट तक माफी नामे के रूप में माफी मांगता है, बोलता है, और वो साइलेंट रहती है, जो उनकी जो उसकी जो प्रेमिका है उसकी मां बिल्कुल साइलेंट रहती है, केवल अपने एक्सप्रेशन के जरिए उसने गजब का रोल किया है। और आयुष्मान खुराना की जो स्क्रिप्टिंग है, जिसने भी लिखा है और जिस तरीके से एक्सप्रेस किया आयुष्मान खुराना ने, गजब का वो छोटा सा हिस्सा है, आप ध्यान से उसे देखिएगा, सुनिएगा, वो आपके अंदर तक वो हिस्सा उतर जाएगा और बहुत गहराई में उतर जाएगा। कम से कम मेरे तो उतरा हुआ है, यार कोई इतना खूबसूरत लिख सकता है, कोई इतने खूबसूरत तरीके से उसको बोल सकता है, अद्भुत हिस्सा है। और उसकी मां ऑटोमेटिक, स्वाभाविक है कि वो पिघल जाती है और स्थितियां सारी बेहतर हो जाती हैं, जो एंडिंग होती है वो सुखांत होती है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है और कुछ भी घटना नहीं घटित होती है दोस्तों, सिर्फ दिमाग में एक घटना घटित होती है और वो ये कि जो आपने अपनी तरफ से सोच लिया था, जो कि पूरी तरह से गलत था, जो अतार्किक था, वो करेक्ट हो जाता है। और याद रखिए फ्रेंड्स कि जो हमारी अवधारणाएं होती हैं, अगर वो सही नहीं है तो हमेशा सत्य को छिपा देती है, सत्य को ढक लेती है। अगर सत्य का सबसे ज्यादा हत्यारा कोई होता है, सत्य की हत्या अगर हम किसी एक औजार से करते हैं, एक हथियार से करते हैं, तो वह हथियार होते हमारी अवधारणा। वो सत्य से आपकी मुलाकात करने होने ही नहीं देगी, आपको मुलाकात करने ही नहीं देगी, और आप पूरी जिंदगी अपने उस गलत अवधारणा को सत्य मानते हुए गलतफहमी में ही जीकर अंतिम सांस लेकर जीवन को खत्म कर देंगे। दोस्तों, प्लीज इसे समझने की कोशिश कीजिए, अवधारणाओं पर मत जाइए, अवधारणाओं को जांचिए, परखिए, तर्क से, विज्ञान से, बातचीत से, जांच पड़ताल से, और इसके बाद अगर सही लगता है तो फिर संवाद के जरिए उसके हल निकालिए। अवधारणाओं पर जीवन को टिकाइए मत। और मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने इस फिल्म को न देखा हो तो प्लीज इस फिल्म को देखिए, बधाई हो। इस फिल्म का नाम है बधाई हो। तो मित्रों, इसी के साथ ही मैं आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करने की आप सबसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।